एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी मेजबान और आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो लिखी तो गई थी करीब 70 साल पहले, पर मुझे लगता है उसकी बातें आज भी उतनी ही ताजी हैं।
बिल्कुल।
मैं हूं आपका दूसरा साथी चर्चा में और हम बात कर रहे हैं रैंडल जरेल की किताब पोएट्री एंड द एज की, मतलब कविता और युग। जरेल एक अमेरिकी कवि और आलोचक थे।
हाँ, और ये किताब दरअसल उनके कुछ निबंधों का संग्रह है जो उन्होंने 20वीं सदी के मध्य में लिखे थे, और वो देख रहे थे कि कैसे आधुनिक कविता और जो उसे पढ़ने वाले हैं उनके बीच जैसे एक दूरी सी बनती जा रही थी।
सही कहा, एक तरह की खाई, और यही बात इसे आज भी इतना रिलेवेंट बनाती है ना।
बिल्कुल, आज भी तो ये सुनने को मिलता है कि अरे आजकल की कविता या कला तो समझ ही नहीं आती, बहुत मुश्किल है।
हाँ, या फिर ये कि आम लोगों की पहुंच से बाहर है। तो सवाल वही उठते हैं जो जारेल उठा रहे थे, क्या कला वाकई मुश्किल हो गई है या हम कोशिश कम कर रहे हैं? और ये जो आलोचक होते हैं, इनका काम क्या है, जज बनना या एक गाइड बनना?
बड़े सवाल हैं, और शायद जरेल की बातें हमें कुछ सोचने पर मजबूर करें आज।
उम्मीद तो यही है।
तो चलिए शुरू करते हैं। पहले रैंडल जरेल के बारे में थोड़ा जानते हैं, कौन थे ये?
हाँ, तो रैंडल जरेल, जैसा मैंने कहा, कवि और आलोचक थे। 1914 में जन्म, 1965 में मृत्यु। और वो सिर्फ लिखते ही नहीं थे, मतलब वो कोई सिर्फ किताबी कीड़ा टाइप नहीं थे, खुद एक बहुत ही माने हुए कवि थे।
उनकी कविताएं मैंने पढ़ी हैं थोड़ी, जैसे द डेथ ऑफ द बॉल टैरेट गनर, बहुत असरदार है, सीधी चोट करती हैं।
बिल्कुल, भावनात्मक गहराई थी उनमें। फिर वो उपन्यास भी लिखते थे, बच्चों के लिए भी लिखते थे, अनुवाद भी करते थे, लेकिन उनकी जो असल पहचान बनी वो एक बहुत ही पैने और प्रभावशाली साहित्यिक आलोचक के तौर पर बनी।
और यही बात मुझे दिलचस्प लगती है कि वो कवि भी थे और आलोचक भी, है ना?
हाँ, यही उनकी खासियत थी। वो सिर्फ बाहर से एक अकेडमी की तरह नहीं देख रहे थे चीज़ों को, वो जानते थे कि कविता लिखना क्या होता है, उसकी मुश्किल, उसका सुख।
तो उनकी आलोचना में सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी था, एक तरह की हमदर्दी थी कला के लिए।
एकदम सही, वो कविता के वकील थे, उसके जज नहीं बनना चाहते थे। इससे उन्हें एक अलग ही नजरिया मिला था, उसे विश्लेषण नहीं करते थे, वो महसूस करते थे।
अच्छा, तो अब आते हैं किताब पर, पोएट्री एंड द एज। आपने कहा ये निबंधों का संग्रह है, तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या था, मतलब मुख्य मुद्दा क्या उठा रहे थे जरेल?
देखिए, जरेल उस वक्त की जो साहित्यिक दुनिया थी ना, उसका तापमान नाप रहे थे एक तरह से, और वो ये देख रहे थे कि कविता और पाठक के बीच जो रिश्ता है वो तनाव में क्यों है। पहला स्रोत ये कहता है कि जरेल का तर्क था कि ये दूरी सिर्फ इसलिए नहीं है कि कवि जानबूझकर मुश्किल लिख रहे हैं।
अच्छा, तो
बल्कि ये उस युग का, उस समय का असर है, एक ऐसा समय जहां मास मीडिया हावी हो रहा था, हर चीज में स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा था,
मतलब हर विषय इतना गहरा होता जा रहा था कि आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया समझना।
हाँ बिल्कुल, और अकादमिक दुनिया में आलोचना का एक ऐसा तरीका चल पड़ा था जो कला के सीधे अनुभव से ज्यादा सिद्धांतों पर जोर देता था।
और दूसरा स्रोत भी कुछ ऐसी ही बात करता है शायद।
हाँ, वो इसी को थोड़ा और खोलता है, कहता है कि जरेल मानते थे कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों में कविता सराहने की क्षमता नहीं रही, बल्कि दिक्कत ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी, आलोचक, कभी कभी तो कवि खुद भी, वो कविता और इसके स्वाभाविक दर्शकों के बीच एक बनावटी दीवारें खड़ी कर रहे हैं।
तो मतलब समस्या कविता की मुश्किल होने की उतनी नहीं जितनी समाज के उस कला से सहज जुड़ाव को न सींच पाने की है।
बिल्कुल यही, और जरेल का हल ये नहीं था कि कविता को आसान बना दो, बच्चों जैसा कर दो।
नहीं, वो कहते थे कि हमें, मतलब पाठकों को, समाज को ज्यादा धीरज रखना होगा, ज्यादा खुले दिल से पढ़ना होगा, एक मानवीय नजरिया अपनाना होगा।
तो ये किताब एक तरह से हमें फिर से पढ़ना सिखाती है कि कविता को कैसे महसूस करें।
तो इस किताब में मोटे तौर पे क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं?
तीन मुख्य बातें दिखती हैं। एक तो भाई, आधुनिक दुनिया में कविता की स्थिति क्या है, लोगों से कैसे ले रहे हैं।
ठीक है।
दूसरा, कुछ बड़े कवियों का पुनर्मूल्यांकन, जैसे विटमैन, फ्रॉस्ट, स्टीवंस, उनको उनकी बनी बनाई छवि से निकाल कर देखना।
और तीसरा?
तीसरा, आलोचना का दर्शन, कि आलोचना का मकसद क्या हो, क्या वो कला की सेवा करे या उस पर हावी हो जाए।
चलिए, तो फिर कुछ खास निबंधों में उतरते। पहला है द ऑब्सक्योरिटी ऑफ द पोएट, यानी कवि की अस्पष्टता। ये तो सीधी उसी शिकायत पर बात करता है जिसके बारे में हम शुरू में कह रहे थे।
हाँ, कि भाई आजकल की कविता समझ क्यों नहीं आती। जारेल इस सवाल को पकड़ते हैं, लेकिन वो सारा दोष कवि पर नहीं डालते।
वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं, हाँ कविता बदली है, लेकिन दुनिया भी तो बदल गई है, पाठक भी बदल गया है, दर्शक वर्ग बटा हुआ है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। पहले की तरह कोई एक कॉमन कल्चरल ग्राउंड नहीं रहा कि एक कवि ने एक इशारा किया और सब समझ गए।
और समाज भी अब कविता को उतनी तवज्जो नहीं देता शायद।
बिल्कुल, लोगों के पास पढ़ने का वक्त कम है, ध्यान भटकाने वाली चीजें हजार हैं। तो जरेल आईना दिखाते हैं, कहते हैं कि भाई जिम्मेदारी दोनों की है, पाठक की भी कवि की भी।
हाँ, ये बात तो सोचने वाली है।
वो पूछते हैं, अगर लोग साइंस या इकोनॉमी जैसे मुश्किल विषय समझने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, तो कविता से उम्मीद क्यों कि वो बिना कोशिश के समझ आ जाए? क्या कविता कम गहरी है?
ये तो चुपता हुआ सवाल है।
बिल्कुल। इसके बाद वो आते हैं आलोचना पर, अपने शायद सबसे मशहूर निबंध द एज ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना का युग में। यहां उनका लहजा और तीखा हो जाता है।
अच्छा, क्या कहते हैं वो?
वो कहते हैं कि 20वीं सदी का मध्य एक ऐसा दौर बन गया था जहां साहित्यिक आलोचना वो इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि लगने लगा था असल चीज साहित्य नहीं बल्कि उस पर की गई बातें हैं।
मतलब कमेंट्री ज्यादा जरूरी हो गई थी असल मैच से।
हाँ, कुछ वैसा ही। वो खास तौर पर न्यू क्रिटिसिज्म पर निशाना साधते हैं, वो नजरिया जो कहता था कि कविता का अर्थ सिर्फ उसके शब्दों में ढूंढो, लेखक या समाज से कोई लेना देना नहीं। जरेल को ये तरीका बहुत मैकेनिकल, बहुत बेजान लगता था।
उन्हें लगता था कि ये आलोचना असली पढ़ने वालों की मदद नहीं कर रहे, बल्कि अकादमिक दुनिया का अपना एक खेल बन गए हैं।
बिल्कुल, और यही वो अपना वो मशहूर सेंट बर्नार्ड कुत्ते वाला रूपक लाते हैं।
हाँ हाँ वो क्या था?
वो कहते हैं, आलोचक को उस सेंट बर्नार्ड कुत्ते जैसा होना चाहिए जो बर्फ में फंसे यात्री को बचाने के लिए अपनी कुप्पी से ब्रांडी पिलाए। यहाँ ब्रांडी का मतलब है आलोचना की रोशनी, समझ।
लेकिन आजकल का आलोचक,
जरेल कहते हैं, वो खुद ही सारी ब्रांडी पी जाता है और फिर यात्री को काट लेता है।
क्या बात है।
मतलब आलोचना मदद करने, रास्ता दिखाने के बजाय अपनी विद्वत्ता का रौब दिखाती है, पाठक को डराती है, उसे कला से और दूर कर देती है।
तो क्या जबरदस्त कटाक्ष है वाकई।
उनके हिसाब से अच्छा आलोचक वो है जो एक जोशीला गाइड हो, जो बताए कि देखो यहाँ ये कितना सुंदर है, यहाँ ये कितना गहरा है, जो पाठक के अनुभव को बढ़ाए,
पुल बनाए, दीवार नहीं।
बिल्कुल।
अच्छा, आलोचना से निपट के फिर जैरेल उन कवियों की तरफ मुड़ते हैं जिन्हें उनके मुताबिक गलत समझा जा रहा था, और ये निबंध किताब का दिल है कह सकते हैं।
हाँ, जैसे वॉल्ट विटमैन पर उनका निबंध सम लाइन्स फ्रॉम विटमैन। विटमैन तो समय बहुत बड़े कवि माने जाते थे, है ना?
हाँ, अमेरिका की जैसे राष्ट्र कवि।
लेकिन कई मॉडर्निस्ट आलोचक उन्हें थोड़ा कमांगते थे, कहते थे बहुत फैले हुए हैं, जरूरत से ज्यादा आशावादी हैं, कला में अनुशासन कम है। उनको एक गुड ग्रे पोएट, मतलब एक भला बूढ़ा सीधा साधा कवि मान लिया गया था,
एक स्टीरियोटाइप बन गया था।
बिल्कुल। जरेल इस छवि को तोड़ते हैं, वो विटमैन की कुछ लाइनें उठाकर दिखाते हैं कि इस भले बूढ़े कवि में कितना अजीबपन, कितनी मनोवैज्ञानिक गहराई, कितनी चौंकाने वाली आधुनिकता थी।
वो उनकी कमियों को नकारते नहीं पर उनकी महानता को रेखांकित करते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि उनकी महानता उनकी कमियों के साथ ही जुड़ी है। वो विटमैन को सिर्फ लोकतंत्र का गायक नहीं बल्कि एक जटिल, विरोधाभासी, हमेशा हैरान करने वाली कवि की तरह दिखाते हैं और उन्हें मॉडर्निज्म का सच्चा पुरखा बताते हैं।
ये तो वाकई एक नई दृष्टि थी विटमैन को देखने की।
और ऐसा ही जबरदस्त काम वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ करते हैं अपने निबंधों टू द लॉडेशंस और द अदर फ्रॉस्ट में।
फ्रॉस्ट तो और भी ज्यादा लोकप्रिय थे शायद, उनकी छवि तो बहुत ही शांत गांव के कवि वाली थी, प्रकृति, सरल ज्ञान।
हाँ बिल्कुल, लेकिन जैरल कहते हैं, रुको, ये सिर्फ एक फ्रॉस्ट है।
अच्छा,
एक दूसरा फ्रॉस्ट भी है जो ज्यादा गहरा है और ज्यादा डरावना है। जरेल डिजाइन या होम बरियल जैसी कविताएं उठाकर दिखाते हैं कि फ्रॉस्ट की दुनिया में कितना अंधेरा, कितनी उदासी, कितना एग्जिस्टेंशियल डर छिपा है।
मतलब फ्रॉस्ट सिर्फ सुंदर प्रकृति के कवि नहीं थे?
नहीं, जरेल कहते हैं उनकी कविताएं अक्सर दिखाती हैं कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड कितना क्रूर और उदासीन हो सकता है।
तो उनका निष्कर्ष क्या था फ्रॉस्ट के बारे में?
यही कि फ्रॉस्ट कोई बीते जमाने के कवि नहीं है, वो टीएस इलियट जितने ही जटिल और बेचैन करने वाले आधुनिक कवि हैं।
ये पढ़ना तो उस वक्त लोगों को चौंका गया होगा, इसने तो फ्रॉस्ट की पूरी इमेज ही बदल दी होगी।
बिल्कुल, हमेशा के लिए बदल दी। ये दिखाता है कि कैसे मशहूर लोगों की भी एक परतदार सच्चाई होती है जिसे उनकी पब्लिक इमेज अक्सर ढक लेती है।
फिर वो वैलिस स्टीवंस पर भी लिखते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं?
यहाँ उनका रवैया थोड़ा मिला जुला है। वो स्टीवंस की भाषा की कारीगरी, उनकी कल्पना की उड़ान, उनकी सुंदरता रचने की क्षमता के कायल हैं।
स्टीवंस का वो आइडिया था ना कि कविता धर्म की जगह ले सकती है।
हाँ, ज़रेल को वो दिलचस्प लगता है, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि स्टीवंस कभी कभी असल जिंदगी की जो उठापटक है, जो दर्द है, उससे बहुत दूर चले जाते हैं। जैसे कल्पना की खूबसूरत दुनिया बनाते बनाते वो असली दुनिया से थोड़ा कट जाते हैं।
तो एक तरह से संतुलित आलोचना है, तारीफ भी और एक सीमा की ओर इशारा भी।
हाँ, और वो विलियम कार्लोस विलियम्स जैसे कवियों की तारीफ भी करते हैं,
विलियम्स,
जिन्होंने कोशिश की थी कि कविता आम अमेरिकी जिंदगी और भाषा के करीब रहे।
बिल्कुल,
उनका वो नारा था ना, नो आइडियाज बट इन थिंग्स, मतलब विचार चीजों में ही होते हैं। ज़रेल को ये पसंद था क्योंकि ये उनके अपने यकीन से मेल खाता था कि कविता को जिंदगी के ठोस अनुभव से जुड़ना चाहिए।
तो विलियम्स की तारीफ करके वो एक तरह से एलियट जैसे बहुत ज्यादा बौद्धिक कवियों पर भी टिप्पणी कर रहे थे।
हाँ, एक तरह से वो दिखा रहे थे कि देखो, आधुनिक होने का एक और रास्ता भी है, जो ज्यादा जमीनी हो, ज्यादा सीधा हो।
तो इन सब बातों से, इस पूरी किताब से कुछ बड़े सबक या संदेश क्या निकलते हैं?
कई निकलते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी कि गंभीर साहित्य पढ़ने वाला दर्शक वर्ग बदलाए। मास कल्चर, स्पेशलाइजेशन, जिंदगी की तेज रफ्तार, इन सब ने मिलकर उस धीरज वाले पढ़ने को मुश्किल बना दिया है जो कला मांगती है।
तो कविता की कठिनाई सिर्फ कवि की नहीं, हमारे समय की भी देन है।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है आलोचक की भूमिका पर। ज़ारेल के लिए आलोचक जज नहीं बल्कि एक पैशनेट वकील है। उसका सबसे बड़ा गुण साहित्य से प्यार होना चाहिए।
उसका काम गलतियां निकालना नहीं बल्कि अच्छी चीजों की ओर इशारा करना है।
हाँ, एक जानकार और जोशीले गाइड की तरह। आलोचना का मकसद नफरत फैलाना नहीं, प्यार जगाना होना चाहिए।
तीसरा सबक,
महान कवियों को उनकी बनी बनाई छवियों से आजाद कराना, जैसे उन्होंने ब्रिटमैन ऑफ फ्रॉस्ट के साथ किया। ये हमें उकसाता है कि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, खुद पढ़ें, खुद देखें, एक्टिव पाठक बनें।
ये तो बहुत जरूरी। और चौथा,
कला में मुश्किल और जटिल होने के अधिकार का बचाव। ज़ारेल ये नहीं कहते कि कला को आसान बना दो, वो कहते हैं कला को जटिल होने का हक है, क्योंकि जिंदगी जटिल है। हल ये नहीं कि कला का स्तर गिराओ, हल ये है कि पाठक अपना स्तर उठाए, ज्यादा धीरज रखे, ज्यादा ध्यान दे।
और पांचवा संदेश,
कविता की बुनियादी इंसानियत। ज़ारेल हमेशा कविताओं को उनके इमोशनल कोर से जोड़ते हैं, प्यार, मौत, दुख, खुशी, डर। उनके लिए कविता सिर्फ शब्दों का खेल या पहेली नहीं है, वो इंसानी दिल और दिमाग की आवाज है।
ये हमें अपने और दूसरों के जज्बातों को बेहतर समझने में मदद करती है।
बिल्कुल। और एक छठा संदेश भी है जो दूसरे स्रोत से भी आता है, वो है संस्थागत आलोचना के खतरे।
मतलब जब आलोचना सिर्फ यूनिवर्सिटी का विषय बन जाती है।
हाँ, तब वो आम पाठक से कट सकती है, मुश्किल भाषा में उलझ सकती है। और इसी से जुड़ा विचार है कि कविता को महसूस करने की क्षमता सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की बपौती नहीं है, ये हम सब में है। संस्थाओं का काम इसे दबाना नहीं, सींचना होना चाहिए।
इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या रूपक हैं जो याद रह जाते हैं, जैसे वो सेंट बर्नार्ड वाला।
हाँ, उसका सार यही है कि आलोचक का काम यात्री को बचाना है, उसे ब्रांडी यानी समझ देनी है। पर आजकल का आलोचक खुद ब्रांडी पीकर यात्री को ही काटने लगता है। ये दिखाता है कि कैसे आलोचना मददगार होने के बजाय डराने वाली या आत्ममुग्ध हो सकती है।
या रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में वो कहना कि दूसरा फ्रॉस्ट जो रोंगटे खड़े कर देता है, वो आरामदेह ज्ञान नहीं बल्कि भयानक अंधेरे का कवि है। ये दिखाता है कि ज़ारेल कैसे सतह के नीचे छिपी सच्चाइयों को उजागर करते थे।
बिल्कुल। और पाठकों पर वो तीखी टिप्पणी, जनता जिसने कवियों को पढ़ा नहीं है इस बात से दुखी है कि वो उन्हें समझती नहीं है। ये उन लोगों पर कटाक्ष है जो कोशिश किए बिना ही शिकायत करते हैं।
हाँ, ये पाठक की अपनी जिम्मेदारी की ओर भी इशारा करता है।
और अच्छे आलोचक की परिभाषा का सार, एक अच्छा आलोचक वो पाठक है जो किसी रचना से प्रभावित होने को तैयार है, जो न सिर्फ ये बता सके कि उसमें क्या गलत है बल्कि ये भी कि उसमें क्या सही है और वो आपके प्यार के लायक क्यों है। यहाँ जोर तारीफ करने और जोड़ने पर है, तोड़ने पर नहीं।
और एक वो बिजली गिरने वाली बात भी थी स्रोत टू में।
हाँ, वो भी दिलचस्प है। सार ये कि एक अच्छा कवि वो है जो जिंदगी भर तूफानों में खड़ा रहकर मुश्किल से 5-6 बार बिजली गिरने यानी महान कविता रचने में कामयाब होता है। ये दिखाता है कि सच्ची कला कितनी दुर्लभ और अप्रत्याशित चीज है, ये कोई फैक्ट्री में नहीं बनती।
बहुत खूब। अच्छा, अब ये बताइए कि ये सारे विचार जो 70 साल पहले के हैं, ये आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं?
कई तरह से। पहली बात तो यही कि हम मुश्किल लगने वाली कला से कैसे पेश आएं, चाहे वो कविता हो, पेंटिंग हो या कोई मुश्किल फिल्म।
जेरिल का सुझाव क्या होगा?
धीरज रखो, खुले दिल से मिलो, तुरंत समझने की जिद मत करो। पहले बस महसूस करो, अनुभव करो, समझ धीरे धीरे खुद बन सकती है।
दूसरी बात,
हम जानकारी या विचारों के उपभोक्ता के तौर पर ज्यादा आलोचनात्मक और साथ ही ज्यादा हमदर्द कैसे बने। जैसे जारिल ने फ्रॉस्ट और विटमैन को उनकी बनी बनाई छवि से अलग देखा, वैसे ही हम भी अपने आसपास की दुनिया में, चाहे कोई नेता हो, कोई मुद्दा हो, सुनी सुनाई बातों पर सवाल उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या इसका कोई और पहलू भी है,
मतलब स्टीरियोटाइप्स पर सवाल उठाना।
बिल्कुल। तीसरा, ध्यान देने का महत्व। आज की इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में जारिल का धीरज से ध्यान लगाकर पढ़ने का आग्रह बहुत जरूरी है।
ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है,
नहीं, ये जिंदगी के हर पहलू में लागू होता है। किसी की बात ध्यान से सुनना, अपने रिश्तों पर ध्यान देना, अपने काम पर ध्यान देना, हम जितना ध्यान देते हैं उतना ही गहरा हमारा अनुभव होता है।
चौथा पॉइंट,
फीडबैक देना और लेना। वो सेंट बर्नार्ड वाली बात, जब हम किसी को कोई सलाह दें तो मकसद मदद करना हो, नीचा दिखाना नहीं, कमियों के साथ ताकतों को भी देखें, और जब हमें कोई फीडबैक मिले तो खुले मन से सुने।
ये बहुत प्रैक्टिकल है। और पांचवा,
जानी पहचानी चीजों में नयापन खोजना। जैसे जेरियल ने फ्रॉस्ट के जाने पहचाने चेहरे के पीछे अंधेरा देखा, वैसे ही हम भी अपनी रूस की देखी वाली चीजों में, अपनी पसंदीदा फिल्म में, अपने मोहल्ले की गली में कुछ नया देख सकते हैं, अगर हम ताजी नजर से देखें।
ये दुनिया को ज्यादा दिलचस्प बनाता है।
बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? मेरे लिए शायद ये कि कला कोई इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज नहीं है, या कोई पहेली नहीं जिसे हल कर दिया। ये एक रिश्ता है जिसे हमें समय देना होता है, समझना होता है।
सही कहा। और एक अच्छा पाठक बनना असल में एक बेहतर, ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा संवेदनशील इंसान बनना है।
और आपके लिए सबसे अहम बात क्या रही?
और मेरे लिए ये कि कला की मुश्किल इसकी नाकामी नहीं, बल्कि हमारे लिए एक चुनौती है कि हम अपनी ध्यान देने की, महसूस करने की क्षमता को और बढ़ाएं। ये याद दिलाता है कि कला और समाज का रिश्ता हमारी पसंद नापसंद से बनता बिगड़ता है,
और इस रिश्ते को जिंदा रखने में हम सबकी भूमिका है।
हाँ, पाठक, कलाकार, आलोचक, समाज, सबकी। ये सिर्फ कला के लिए नहीं, हमारे अपने भले के लिए जरूरी है। कला से जुड़ना हमें ज्यादा इंसान बनाता है।
बिल्कुल, जारिल हमें यही याद दिलाते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।